ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस दौरान सरकार सदन के नेताओं के साथ चर्चा करेगी और सत्र के सुचारू संचालन के लिए दलों से सहयोग की अपेक्षा करेगी। बजट सत्र 31 जनवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के साथ शुरू होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। वित्त मंत्री 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। लोकसभा और राज्यसभा में सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। बजट सत्र का पहला चरण शुक्रवार से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलेगा और सत्र का दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल 2025 तक चलेगा। सरकार ने 34,000 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दे दी है। हरित प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के लिए एक सुदृढ़ मूल्य श्रृंखला बनाने का निर्णय लिया गया है। कल नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इथेनॉल मिश्रण से देश की अर्थव्यवस्था में भी मदद मिली है और 1,13,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंडल के इस महत्वपूर्ण फैसले को आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन से संबंधित मंत्रिमंडल के फैसले से भारत की उच्च प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा और अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव और पुलिस महानिदेशक कल प्रयागराज में संगम पर हुई भगदड़ की घटना के बाद आज महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए प्रयागराज जाएंगे। इस दुर्घटना में कल 30 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई थी और 60 घायल हो गए थे। घायलों का स्थानीय अस्पतालों में इलाज चल रहा है। मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक घटनास्थल का जायजा लेंगे और मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने घटना की गहराई से जांच कराने के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का भी गठन किया है। ये आयोग 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। राष्ट्र आज महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ये दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नई दिल्ली में राजघाट स्थित गांधी जी की समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना आयोजित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी के आदर्श देशवासियों को विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री ने देश के लिए शहीद हुए सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी और उनकी सेवा और बलिदान को याद किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के समापन के अवसर पर कल नई दिल्ली के ऐतिहासिक विजय चौक पर बिटिंग रिट्रीट के दौरान प्रतिष्ठित धुने बजाने वाले सभी बैंड के प्रदर्शन की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि सभी बैंड की प्रस्तुतियां प्रभावशाली थीं। बैंड के प्रस्तुतीकरण में संविधान के 75 वर्ष पूरे होने और एक पेड़ माँ के नाम अभियान को भी शामिल किया गया। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा के ग्वांतानामो बे में अमरीकी नौसेना बेस पर 3,000 लोगों की क्षमता के प्रवासी हिरासत केंद्र बनाने की घोषणा की है। ये नया केंद्र मौजूदा उच्च सुरक्षा जेल से अलग होगा और इसमें अवैध रूप से गंभीर अपराध वाले प्रवासियों को रखा जाएगा। आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन केंद्र मौजूदा स्थल का विस्तार करेगा और इसमें समुद्र में पकड़े गए अप्रवासियों को रखा जाएगा। इस बीच क्यूबा की सरकार ने इस कदम की आलोचना की है और इसे अवैध तथा अमानवीय बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में बारिश और बर्फबारी की संभावना व्यक्त की है। शनिवार तक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। विभाग ने बताया कि अगले 5 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, विदर्भ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि शनिवार तक अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में 1 फरवरी तक रात के समय कोहरा छाया रह सकता है। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में कल शाम गुवाहाटी इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने हैदराबाद फुटबॉल क्लब को 4-1 से हरा दिया। गुलरेमो फर्नांडिस ने 17वें मिनट में नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब की तरफ से गोल किया। बाद में अलाइकदीन अजारिया ने हाफ टाइम से पहले 1 गोल करके अपनी टीम को 2 गोल की बढ़त दिला दी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।